पिछले पाठ में आपने 43वीं कारिका में पढ़ा था कि शिष्टैः शब्दानुशासनम आरभ्यते। शिष्टों के द्वारा तीन मुनि जो हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के द्वारा शब्द अनुशासन, शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानाम अनुशासन माने शब्दों का अनुशासन, ये व्याकरण का पर्यायवाची शब्द है मैंने बोला था। तो शब्दानुशासन अर्थात व्याकरण का जो है ना आरंभ किया, तो शिष्टों के द्वारा शब्दानुशासन आरंभ किया गया, ये आपने इससे पहले वाली कारिका में पढ़ा। इस शब्दानाम अनुशासनम में जो शब्द है उसको अब हमें समझना है कि किन शब्दों का अनुशासन किया जाता है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द का स्वरूप कैसा होता है। तो इस पाठ में जो है ना अब यहाँ से जो पाठ आपका प्रारंभ होगा उसमें सौरभ को बड़ी प्रसन्नता होगी, वो बहुत दिनों से जो है ना स्फोट के बारे में पढ़ना चाह रहा था, समझना चाह रहा था। तो अब यहाँ से स्फोट की ही चर्चा चलेगी। तो हाँ, मैं अपने प्रसंग में आता हूँ कि शब्दानाम अनुशासनम शिष्टैः आरभ्यते। तत्र शब्दः कः, कीदृशः शब्दः, शब्द कैसा होता है, इसके बारे में 44वीं कारिका में बताया गया आपको। द्वाब उपादान शब्देषु शब्दौ शब्द विदो विदुः एको निमित्तम शब्दानाम अपरोर्थे प्रयुज्यते। थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो करके इस का मतलब समझिएगा कि अर्थ का जो बोध होता है श्रोता को, उसमें कारण क्या होता है, ऐसा क्या होता है जिसके बाद श्रोता को जो है ना अर्थ बोध होता है। तो आप जानते हैं कि श्रोता श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से, श्रोत्रेंद्रिय समझते हैं ना कान, तो श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से श्रोता शब्द को सुनता है और शब्द को सुनने से उसे अर्थ का बोध होता है। तो अर्थ का बोध जो है ये हो गया कार्य, और जिसके कारण अर्थ बोध होता है, शब्द को सुनने के कारण अर्थ बोध होता है, तो शब्द हो गया कारण। तो शब्द रूपी कारण से अर्थ बोध रूपी कार्य होता है, इन दोनों में कार्य कारण भाव है, क्योंकि शब्द को सुनते हैं तो अर्थ का बोध होता है, शब्द को नहीं सुनते हैं तो अर्थ का बोध नहीं होता है। तो जिसके होने पर जो हो, जिसके नहीं होने पर जो न हो, वहाँ पर कार्य कारण भाव होता है। यहाँ पर कारिका में कहा गया कि द्वौ उपादान शब्देषु शब्दौ शब्द विदो विदु, शब्द विदः माने वैयाकरण, शब्दम वेत्ति इति शब्दवित, जो शब्द को जानता है उसे शब्दवित कहते हैं। तो शब्दविद कौन होंगे, वैयाकरण होंगे। विदुः माने जानंती, शब्द विदो विदुः माने वैयाकरणाः जानंती, वैयाकरण लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, तो द्वौ शब्दौ, दो तरह के शब्द को वैयाकरण लोग जानते हैं। ये जो कहते हैं कि द्वौ शब्दौ शब्द विदो विदुः, तो अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि किस टाइप के शब्दों में दो प्रकार का शब्द मानते हैं या जानते हैं वैयाकरण। उसके लिए कहा उपादान शब्देषु, उपादान शब्दों में दो प्रकार के शब्द को शब्दविद जानते हैं। तो दो प्रकार के शब्द को शब्दविद जानते हैं, ये बात तो चलिए हो गई। अब ये जो इन्होंने कहा कि उपादान शब्दों में दो प्रकार के शब्द को शब्दविद जानते हैं, ये उपादान शब्द क्या है। ऐसे उपादान शब्द कहते हैं कि ऐसा शब्द जो उपादान हो माने कारण हो, किस चीज़ के लिए कारण हो, तो अर्थ बोध के लिए कारण हो। तो अर्थ के बोध में जो कारण शब्द है उसी शब्द को, कारण शब्द को उपादान शब्द कहा गया है। तो जिन शब्दों को के कारण अर्थ का बोध होता है, उन्हीं शब्दों को उपादान शब्द कहा जाता है। और एक शब्द में अगर अर्थ करना चाहें उपादान शब्द का, तो कर लीजिए अर्थवाचक शब्द। क्या करेंगे, उपादान शब्द का अर्थ अर्थवाचक शब्द। तो उपादान का अर्थ यहाँ पर करना है अर्थवाचक, उपादान शब्द का अर्थ हो गया अर्थवाचक शब्द। तो तो अर्थवाचक तो जानते हैं आप लोग, भूषण भी पढ़े हैं कि अर्थ का जो बोधक होता है उसे हम अर्थवाचक कहते हैं। तो जितने सारे शब्द हैं साधु शब्द या परिनिष्ठित शब्द, उन सारे शब्दों को सुनने के बाद अर्थबोध होता है। तो वो तो अनंत शब्द हैं, तो उपादान शब्द से ना अनंत शब्द ले लिए जाएंगे जिन शब्दों को सुनने से अर्थ का बोध होता है। इसीलिए उपादान शब्देशु में बहुवचन का उपयोग किया गया, क्योंकि उपादान शब्द बहुत सारे शब्द होते हैं, अनंत शब्द होते हैं। तो उपादान शब्दों में माने अर्थवाचक अनंत शब्दों में दो प्रकार का शब्द जो है व्याकरण उसका वर्गीकरण करते हैं, दो प्रकार का शब्द मानते हैं अनंत उपादान शब्दों में माने अनंत अर्थवाचक शब्दों में। वो दो प्रकार के शब्द कौन हैं? तो एक है स्फोट और दूसरा जो है वो है बैखरी। फिर से सुन लीजिए, पहला एक शब्द है स्फोट शब्द और दूसरा है बैखरी शब्द। बैखरी शब्द क्या होता है? तो मैंने कहा होगा आपसे कि चार प्रकार की बाक होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। तो पराबांग मूल चक्रस्था, पराबाणी जो होती है ना वो मूलाधार में स्थित रहती है। पश्यंती नाभि संस्थिता, और पश्यंती बाक जो होती है वो नाभि में स्थित होती है। और हृदिस्था मध्यमा गेया, और मध्यमा बाक जो होती है वो हृदिस्थ होती है, माने हृदय में रहती है। और बैखरी कंठ देश गा, और बैखरी बाक जो होती है वो कंठ देश में रहती है। तो बैखरी बाक जो है जिसको जिसका जिस मुंह से जो बाक निकलती है और जिस बाक को श्रोता जो है कान से सुनता है, वक्ता जिस बाक को बोलता है और श्रोता जिस बाक को सुनता है, उसको कहते हैं बैखरी बाक। ठीक है, तो परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी में चतुर्थ जो बाक है बैखरी बाक, उस बैखरी बाक का ही उच्चारण होता है और बैखरी बाक का ही श्रवण होता है। तो ये जो बैखरी बाक है इसको अब बाक शब्द से नहीं कह करके हम ध्वनि शब्द से कहेंगे। आप जो है ना एक ही समय अगर बैखरी ध्वनि हम कहते हैं उसको आप समझिएगा कि बैखरी बाक ये चतुर्थ बाक है जो कि कंठ देश में विद्यमान होती है, और इस बैखरी ध्वनि का ही वक्ता उच्चारण करता है और इस बैखरी ध्वनि का ही जो है श्रोता श्रवण करता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, किस बाक को बोल रहा हूँ या किस ध्वनि को बोल रहा हूँ, तो बैखरी बाक को बोल रहा हूँ, बैखरी ध्वनि को बोल रहा हूँ। आप जो सुन रहे हैं वो बैखरी बाक को सुन रहे हैं, बैखरी ध्वनि को सुन रहे हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि बैखरी ध्वनि क्या होती है, बैखरी बाक क्या होती है। तो दो तरह के शब्द जो मानते हैं व्याकरण है, एक मानते हैं बैखरी ध्वनि रूपी शब्द, और दूसरा शब्द जो मानते हैं वो मानते हैं स्फोट शब्द। ये स्फोट शब्द जो है इसमें कमाल है, वक्ता जो बोलता है और श्रोता जो सुनता है वो भिन्न शब्द है, और जो शब्द अर्थ का बोध कराता है वास्तविक रूप से वह शब्द जो है वह भिन्न है। इसका क्रम ये है, मैंने कहा था कि इस थोड़ा सीरियस होकर के सुनना है। ये स्फोट नाम का जो शब्द है वह उसको अगर हम चार बाक में बांटेंगे, परापश्यंती, मध्यमा, बैखरी में, तो मध्यमा बाक जो है जिसको मैंने बताया था अभी कि हृदय देश में रहती है मध्यमा बाक, तो वो स्फोट जो है ना वो मध्यमा बाक स्वरूप होती है। तो मध्यमा बाक हृदय में रहती है, इसका मतलब स्फोट भी जो है वो हृदय में रहता है। इसी को भगवान वासुदेव ने गीता में कहा था कि हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं जो है ना हृदय देश में विद्यमान, सबके हृदय देश में विद्यमान रहता हूँ। तो वह जो हृदय देश में जो विद्यमान रहने वाला जो शब्द है वही शब्द जो है वह स्फोट शब्द होता है। और जब वक्ता कुछ अर्थ की विवक्षा करता है, कुछ अर्थ को बताने के लिए शब्द का प्रयोग करना चाहता है, तो वहाँ जो हृदय देश में स्थित जो स्फोट शब्द है वह स्फोट शब्द बैखरी ध्वनि का रूप धारण करके बाहर निकलता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, जब वक्ता कुछ बोलना चाहता है तो क्या होता है कि हृदय देश में जो वह स्फोट शब्द है वह स्फोट शब्द वहां से निकल करके कंठ देश में आकर के बैखरी ध्वनि के स्वरूप में बदल जाता है, और फिर वह बैखरी ध्वनि जो है वो जिब्बा, तालु, दांत इन सबों के द्वारा, उच्चारण स्थान के द्वारा वो बाहर निकलता है। तो वह जो बाहर निकलता है वह बैखरी ध्वनि होती है, और उसके मूल में कौन है, स्फोट शब्द है, क्योंकि स्फोट शब्द ही अपना स्वरूप बदल करके बैखरी ध्वनि के रूप में बाहर प्रकट होता है, और उसी बैखरी ध्वनि को श्रोता सुनता है। ये तो हुआ इधर से, माने वक्ता से जो श्रोता तक पहुंचता है शब्द, उसके बारे में मैंने बताया कि वक्ता के हृदय देश में जो स्फोट है वह स्फोट शब्द बोलने की इच्छा होने के बाद, प्रयत्न करने के बाद वह स्फोट शब्द कंठ देश में आता है, उसका स्वरूप कंठ देश में आकर के बैखरी ध्वनि का स्वरूप हो जाता है, और वही बैखरी ध्वनि स्वरूप उच्चारण स्थान के प्रयत्न से वह बाहर निकलता है, और उसी बैखरी ध्वनि को श्रोता सुनता है। अब ये तो मैंने वक्ता की दृष्टि से बोला, और श्रोता की दृष्टि से देखिए कि अब उसमें क्या कैसे होता, कब कैसे क्या होता। श्रोता जो है श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा वह जो बैखरी ध्वनि है उसको सुनता है, और वह बैखरी ध्वनि श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो है ना वह हृदय देश में वह ध्वनि पहुंच जाती है। कौन सी ध्वनि? बैखरी ध्वनि पहुंच जाती है जिसको श्रोता सुनता है। हृदय देश में वह बैखरी ध्वनि पहुंच करके क्या करता है कि उसके श्रोता के हृदय देश में भी स्फोट विद्यमान है, तो वह बैखरी ध्वनि हृदय देश में पहुंच करके स्फोट, श्रोता के हृदय देश में जो स्फोट है उसको अभिव्यक्त कर देती है, उसको प्रकाशित कर देती है, और ज्यों ही वह श्रोता के हृदय देश वाला स्फोट प्रकाशित होती है फिर श्रोता को जो है ना अर्थबोध हो जाता है। आपने देखा, फिर से मैं एक माने संक्षेप में बता दूं कि स्फोट शब्द जो है वह वक्ता के हृदय देश में भी रहता है और श्रोता के हृदय देश में भी रहता है। वक्ता जब बोलना चाहता है तो वक्ता के हृदय देश का स्फोट आकर के कंठ देश में आकर के बैखरी ध्वनि के रूप में परिवर्तित होता है, और वही बैखरी ध्वनि मुंह के बाहर निकलता है, और वह ध्वनि हवा के तरंग पर तैरते हुए श्रोता के श्रोत्रेंद्रिय तक पहुंचता है। श्रोता श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा उस बैखरी ध्वनि को सुनता है, सुनने के बाद वह बैखरी ध्वनि श्रोता के हृदय देश में पहुंचती है, और वहां पहुंच करके श्रोता के हृदय देश में जो स्फोट शब्द है उसको वह अभिव्यक्त कर देती है, प्रकाशित कर देती है। उसके बाद अर्थ का बोध जो है ना, वहां का जो स्फोट शब्द है श्रोता के हृदय देश वाला, वह स्फोट शब्द उस श्रोता का को अर्थ बोध करा देता है। तो इस तरह से ये क्रम है वक्ता और श्रोता के बीच में। इसमें अर्थबोधक शब्द कौन हुआ, अर्थवाचक शब्द कौन हुआ? स्फोट हुआ, क्योंकि वह स्फोट जब अभिव्यक्त होता है बैखरी ध्वनि के द्वारा तब जाकर के जो है ना श्रोता को अर्थबोध होता है। तो द्वाब उपादान शब्देशु शब्दो शब्द विदो विदु में दो तरह के जो शब्द बताए गए हैं, तो एक हो गया आपका स्फोट शब्द, जिसके लिए कहा कारिका में अपरह अर्थे प्रयुज्यते। अपर शब्द यहाँ पर होगा स्फोट शब्द, वह जो स्फोट शब्द है अर्थे प्रयुज्यते माने अर्थ ग्रहणे प्रयुज्यते, अर्थ के ग्रहण में, अर्थ के बोध में अपरह स्फोट शब्द प्रयुज्यते, अर्थ के ग्रहण में स्फोट शब्द का प्रयोग होता है, माने अर्थ का बोध स्फोट शब्द कराता है। तो एक हो गया स्फोट शब्द, और दूसरा जो है वो बैखरी ध्वनि वाला शब्द वो क्या होता है, तो कहते हैं कि एको निमित्तम शब्दानाम। यहाँ जो शब्दानाम है इसमें स्फोट शब्दानाम कर लीजिए कि स्फोट शब्द में एक जो है बैखरी ध्वनि वाला शब्द वह निमित्त होता है, माने कारण होता है। आपने देखा कि ये जो है ना बैखरी ध्वनि जो है ना वह उसको अभिव्यक्त करती है, किसको? स्फोट को, और अभिव्यक्त होने के बाद शब्द जो है अर्थ का स्फोट स्फोटात्मक शब्द जो है वह अर्थ का बोध कराता है। तो स्फोट शब्द की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें निमित्त माने कारण कौन होता है, तो बैखरी ध्वनि, क्योंकि बैखरी ध्वनि ही श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा श्रोता के हृदय देश में पहुंच करके और उस स्फोट शब्द को अभिव्यक्त करती है। तो अभिव्यक्त करने वाली जो बैखरी ध्वनि है वह निमित्त हो गया, वह कारण हो गया, और कार्य क्या हो गया, तो श्रोता के हृदय देश में जो स्फोट शब्द है जो अभिव्यक्त होता है वह कार्य हो गया। तो दो प्रकार के शब्द को व्याकरणों ने चिन्हित किया है, बताया है, एक बैखरी ध्वनि वाला शब्द और एक स्फोट वाला शब्द। तो बैखरी ध्वनि वाला जो शब्द है वह शब्द स्फोट को अभिव्यक्त करती है, और ये जो स्फोट शब्द है यह अर्थ का बोध कराती है। ये तो पूरा प्रोसेस हमने बताया। अब इससे पहले मैंने ये बताया था कि स्फोट और बैखरी ध्वनि जो है इसमें परस्पर कार्य कारण भाव है। देखिए ये बताया था, और एक और अभी आप समझिए कि इन दोनों में माने स्फोट में और बैखरी ध्वनि वाले शब्द में, दोनों शब्द ही हैं, बैखरी ध्वनियात्मक शब्द और स्फोटात्मक शब्द, इन दोनों शब्दों में जैसे कार्य कारण भाव है उसी तरह से व्यंग्य ये अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भाव भी है। क्या है? अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भाव। तो स्फोट शब्द जो होता है वह अभिव्यंग्य होता है, और बैखरी ध्वनियात्मक शब्द जो होता है, बैखरी ध्वनि शब्द जो होता है वह अभिव्यंजक शब्द होता है। अभिव्यंजक माने अभिव्यक्त करने वाला, अभिव्यंग्य शब्द मतलब अभिव्यक्त होने वाला। तो द्वाब उपादान शब्देशु शब्दो शब्द विदो विदुः, माने उपादान अनंत शब्दों में माने अर्थवाचक अनंत शब्दों में दो प्रकार के शब्दों को शब्दविद बताते हैं, माने व्याकरण बताते हैं। एक तो स्फोट शब्द का अभिव्यंजक जो ध्वनि शब्द है उसको बताते हैं, और दूसरा अर्थ का बोधक जो स्फोट शब्द है उसको बताते हैं। तो दो प्रकार के शब्द हो गए, एक हो गया अभिव्यंजक शब्द, एक हो गया अभिव्यंग्य शब्द। तो अभिव्यंजक शब्द हो गया ध्वनि माने बैखरी ध्वनि, और अभिव्यंग्य शब्द हो गया स्फोट शब्द। इस तरह से इस कारिका को थोड़ा सा हो सके तो एक बार और ऑडियो आप सुन लीजिएगा और इसको समझिएगा कि स्फोट में और बैखरी ध्वनि में अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भाव संबंध है। अभिव्यंग्य शब्द हो गया स्फोट शब्द, और अभिव्यंजक शब्द हो गया बैखरी शब्द। बैखरी शब्द जो है उसको वक्ता बोलता है और उसी को श्रोता सुनता है, और स्फोट शब्द जो है वह हृदय देश में विद्यमान रहता है मध्यमा वाक के रूप में। वही स्फोट शब्द जो है बैखरी ध्वनि के रूप में बाहर आता है, और वही स्फोट शब्द जो है जब बैखरी ध्वनि से अभिव्यक्त होता है तो श्रोता को अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, तो आज का पाठ जो है यहीं पर हम स्थगित करते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको मनन जरूर कर लीजिए, और फिर आगे इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी।